जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।
ओम शांति। बाबा की कोयल कहूं या बाबा की बुलबुल कहूं, बाबा ने ही आपको ये आवाज का वरदान दिया शीलू दीदी को, कि आपकी आवाज भी बहुत सेवा करेगी। और सचमुच आप सब भी देखते हैं कि दीदी की आवाज, दीदी का ज्ञान सुनाने की विधि, इतनी सरल विधि, सुंदर तरीके से आप हमें ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। आदरणीय शीलू दीदी बाल्यावस्था से ही ज्ञान में है और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के पश्चात पूर्ण रूप से आपने अपनी सेवाएं समर्पित रूप से दे दी। देश विदेश में केवल भ्रमण ही नहीं, लेकिन बहुत से स्थानों पर रहकर आपने सेवा दी है, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और जी टीवी, सोनी टीवी, जागरण, संस्कार पर सदा आप आते रहते हैं और यूं सब शीलू दीदी से परिचित हैं। परिचित हैं तो शीलू दीदी का हमारे बीच स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आज शीलू दीदी हमारे बीच हैं, जो बाबा हमसे चाहता है। और वो जो बाबा ब्रह्मा बाबा के भी अंतिम बोल थे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, तो ऐसा बाप समान कैसे बने? ये स्थितियां बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति कैसे बने? तो आदरणीय दीदी जी हमें बताएंगी भी और इतना दीदी प्यार से हमें गाइड करते हैं कि आप उस पुरुषार्थ में लग ही जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पुनः दीदी का स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। आप सभी यहां बट्टी करने आए हैं और आते ही आप सबको यह सुंदर विजय माला पहनाई गई और ठप्पा लगाया गया कि आप फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या बट्टी करने आए हैं। तो फरिश्ता तो बनने का बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि घर जाना है, फिर देवता बनना है, पर उसके पहले फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता बनने के लिए दे और दे के सब संबंधों को भूल एक की लगन में मग्न होना है। फरिश्ता के कोई भी प्रकृति से रिश्ते नहीं है। तो दे और दे के संबंध, दे के पदार्थ, ये अगर आकर्षित करते हैं तो देवता बनने में तो दूर, लेकिन फरिश्ता बनने में भी विघ्न डालते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को सदा ये बुद्धि में था, श्री कृष्ण बनना है, ये तो बहुत ही बुद्धि में था, बस ये पुराना चोला छोड़ मैं ये नया चोला धारण करूंगा, यही सोचकर बाबा गदगद हो जाते थे, नशा चढ़ जाता था। लेकिन जो आंतरिक पुरुषार्थ थी वो तो बहुत ही श्रेष्ठ थी। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा मैं तो जरूर स्वर्ग की महारानी बनूंगी, मैं ये करूंगी। हाँ, तो बाबा के आगे बहुत सारे सुंदर वायदे लिखते हैं। तो कई बार बाबा कहते हैं, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, अच्छी अच्छी बातें मुख से निकलती, अच्छी बात है, लेकिन वैसा पुरुषार्थ भी तो हो। पुरुषार्थ है नहीं और कह रहे हम ये बनेंगे वो बनेंगे। तो बाबा मिसाल किसका देते हैं जो केवल कहेंगे ये करेंगे वो करेंगे पर पुरुषार्थ ऐसा है नहीं, तो बाबा किसका मिसाल देते हैं? नारद का। नारद ने क्या सोचा, विष्णु जी मुझे इतना सुंदर रूप दे और लक्ष्मी मुझे ही वरमाला पहनाए, पर वरमाला मुझे पहनाएगी ये सोचकर बैठ तो गया सभा में, लेकिन शक्ल कैसी चीज, बंदर जैसी। तो हम भी बड़े बड़े बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ भी तो हो। आप जो कहते हो अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। जिस बात को हम सोचते हैं उसको आकर्षित तो करते हैं। तो अगर ये इतनी अच्छी अच्छी बातें भी सोचते हैं पर पुरुषार्थ ऐसा नहीं है, तो फिर चाहे भले कितना भी आप सोचो तो कहाँ तक कहाँ मिलेगा। तो पुरुषार्थ भी उसी अनुसार हो, और ब्रह्मा बाबा ने वो पुरुषार्थ करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी कि जो करना है वो अभी करना है, ये उनका बहुत दृढ़ संस्कार था। इसीलिए साधारण परिवार में जन्मे लेकिन एक ही जन्म में कितने ऊंचे औहदे पर पहुंचे, इतने ऊंचे धंधे में पहुंचे, जो हीरे जवाहरातों के जेवर बाबा बनाते थे राजाओं महाराजाओं के लिए, अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वही उस समय के सबसे बड़े थे। तो एक ही जन्म में ये कैसे कर लिया उन्होंने, जबकि उनके उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो उनको प्रमोट करे, उनको आगे बढ़ाए, उनको धन की मदद करे, लेकिन बाबा ने अपने बलबूते पर ये सब किया। तो इसका एक ही मुख्य कारण था कि बाबा ने जो ठाना उसको क्रियान्वित करने लिए दृढ़ता अपनाई, ये करना ही है और उसके लिए ये करना है, ये बनना ही है तो उसके लिए ये करना है। शिव बाबा ने उनको कहा कि आपका ये संपूर्ण स्वरूप है, तुम ही अभी साकार में ब्रह्मा सो फरिश्ता ब्रह्मा बनोगे, तुम्हारा ही ये संपूर्ण स्वरूप है। बाबा ने उस स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया तो बस लगन लग गई, मुझे ही संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। और जब तक संपूर्ण नहीं बने तब तक अंत घड़ी तक वो लगन बनी रही, बढ़ती रही। तो क्या है इसका राज, अंदर की सच्चाई सफाई, और जो बाबा ने कहा वो किया, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। हम लोग तो कई बहाने बनाते हैं ना, करेंगे, जिसको बाबा कहते गे की भाषा बोलते हैं, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, हो जाएगा, या तो गे या तो गागा हो जाएगा, बन जाएगा, आदि आदि। और बाबा कहते थे करना ही है, हुआ ही पड़ा है, और वो स्वरूप बन जाते थे और अंत की घड़ी भी बाबा की जैसी स्थिति थी वैसे ही बाबा के मुख से ये तीन अंतिम शब्द निकले, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहना, और बच्चों से छुट्टी। ये बाबा ने कहा, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना और बच्चों के आगे झुके, हाथ जोड़ा और फिर छुट्टी कह करके बाबा कमरे में गए। हिस्ट्री हॉल में अंतिम वो मुरली थी बाबा की, 18 जनवरी की रात की रात्रि क्लास। तो हम यही देखते हैं कि बाबा कैसे उस स्थिति तक पहुंच गए थे, क्योंकि जब भी कहते निराकारी अवस्था तो निराकारी अवस्था बाबा की देखी। निराकारी अवस्था में तीन अवस्थाएं आती है, एक तो है देही अभिमानी स्थिति जिसको आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं, वो निराकारी स्थिति का पहला कदम है, क्योंकि देही अभिमानी माना हर वचन में, हर कर्म में, हर सोच में वो देही अभिमानी स्थिति हो, व्यवहार में देही अभिमानी स्थिति हो। और देही अभिमानी स्थिति के का अर्थ है कि जो देह अभिमान के जो भी स्वरूप है उनसे अनभिज्ञ हो, उनसे परे हो। और देह अभिमान की स्थिति क्या है, कई लोग क्या समझते हैं कि नहीं हमारे अंदर देह अभिमान तो है ही नहीं, लेकिन देह अभिमान दो रूप से पनपता है। एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी देह अभिमान का रूप है, जो अभिमान अहंकार बन जाता है, देह अहंकार। और उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माना मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अंदर ही है सब कुछ, मैं ही कर सकता हूं। तो ही शब्द आता है उसमें, और जहां पर मैं ही आया माना ये देह अहंकार है, जैसे दूसरों को पूछना ही नहीं, दूसरों की कदर ही नहीं करना, दूसरों को कुछ भी नहीं समझना, मैं ही हूं। और ये भी देखा गया है जिन जिन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया उनका अंत कैसे आया, बहुत इतिहास हमारे आगे साक्षी है। और दूसरी ओर भी एक देह अभिमान का स्वरूप है, और वो है एकदम हीनता की भावना, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। तो अगर ये भी अगर भावना है, ये भी देह अभिमान का ही रूप है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, उसको कुछ कहो ना ये काम करो, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होगा, तो मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, तो उससे भी मैं तो आ ही जाता है ना, मैं मेरे अंदर या मैं। तो अति हीनता और अति अभिमान जो अहंकार का रूप ले लेता है, मैं ही और मैं कुछ भी नहीं, तो बाबा कहते ये दोनों ही देह अभिमान का रूप है। लेकिन देही अभिमानी स्थिति में वो निरअहंकारिता आती है, अहंकार भी नहीं और स्वमान भी जबरदस्त, इतना स्वमान जो भगवान का भी तख्त जीत सकते हैं, जब बाबा हमी कहते हैं तुम बाप का दिल तक तो जीतते हो, तुम बाप के गदी नशीन बनते हो, बाप की के वारिस बनते हो, तो इतने हद तक हम बन सकते हैं इतना नशा। तो एक और इतना नशा और दूसरी ओर इतनी निरहंकारिता कि बच्चे मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, बच्चों को सदा आगे रखता हूं और बच्चों को हर बात में आगे रखा तो कुछ खुद तो पीछे नहीं रहा ना, आगे रखने में खुद भी आगे ही है। तो इसीलिए बाबा के अंदर ये दोनों की कला थी, दोनों की विशेषता थी। स्वमान भी इतना, मैं कौन, रोज बच्चों को भी ये टाइटल देते हैं, बच्चे तुम कौन हो, स्वमान के टाइटल। वह जितना ही स्वमान उतना ही निर्माण। तो इसको कहेंगे एक सुंदर बैलेंस जो ब्रह्मा बाबा में था, और उस बैलेंस के आधार पर ब्रह्मा बाबा को कितनी ब्लेसिंग्स मिली। आज भी बाबा ने कहा बच्चे इस किसका फोटो लेंगे, शिव बाबा का तो फोटो निकलेगा नहीं है। और कई लोग होते ना अभिमान में, यहाँ मेरा फोटो लो, मेरा फोटो लो, हा? मेरा मैं आया कि नहीं आया मेरा फोटो आया कि नहीं आया। और यहाँ तक कि कहते अरे मैं तो रह गया, तो मैं भी वो भी मैं है। और दूसरा है कि किसका फोटो लेंगे, शिव बाबा का तो फोटो आता नहीं, आत्मा का भी आता नहीं, लेकिन चलो बच्चों को खुश करने के लिए बाबा खड़े हो जाते थे। वो भी देखो बाबा अगर न खड़े होते और कुछ फोटो हमारे पास बाबा के न होते तो आज जो पीछे आने वालों को कैसे पता चलता कैसे थे बाबा। लेकिन ये भी उनकी निरहंकारिता, अच्छा आओ बच्चे आओ, तो बच्चों की खुशी के खातिर करना ये एक बात है, और दूसरा अपनी खुशी के खातिर करना, अंतर है ना, बहुत अंतर है। मेरी खुशी इसमें है कि मेरा फोटो आए और बच्चे चलो खुश होंगे, चलो आओ बच्चे आओ 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 बच्चे, और बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है, ये है निरहंकारिता। क्योंकि ये निरअहंकारिता का भी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और निर्विकारी और निरअहंकारी, इसमें भी निरअहंकार को अलग किया निर्विकार से। वैसे तो कह सकते हैं निरकामी, निरक्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही और निरअहंकारी, और पांच विकारों में अहंकार भी आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो पांचों को अलग नहीं किया, लेकिन जो अहंकार पांच में है उसको अलग किया और निरअहंकारी अलग से कहा। क्योंकि और विकार जीतना तो फिर भी सहज है। अभी अगर हम ब्राह्मणों से पूछें कि भाई काम विकार है, कहेंगे वो तो सब भूल गए, है ना, भूल गए कि नहीं भूले, या अभी भी सताता है, अभी तो नहीं सताता, तो वो तो भूल गए। फिर क्रोध के लिए भी कहेंगे अभी तो मैं इतना मीठा हो गई हूँ, मीठी हो गई हूँ, मीठा हो गया हूँ, गुस्सा भी मैं भूल गया, ऐसे है कि अभी तक आता है कि भूल गए गुस्सा करना। एक भाई आया, उसने कहा बहन जी मैं तो गुस्सा करना ही भूल गया हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा याद करना है क्या गुस्सा करना ही भूल गया हूँ, तो जो चीज भूलनी है वो तो भूलनी है कि इसको फिर से याद करना है। तो चलो काम भी भूल गया, क्रोध भी भूल गया, बस रात को बाबा की गोद में सो जाना है, यही बुद्धि में, और तो सब बातें भूल गई। और मैं आत्मा हूँ, मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप, सारा दिन ओम शांति कहते तो गुस्सा आएगा क्या, है ही ओम शांति लोग भी हम लोगों को देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये ओम शांति वाले हैं, ओम शांति वाले, अब ओम शांति वाले को गुस्सा करता हुआ देखे तो कहेंगे आप लोग तो ओम शांति वाले और गुस्सा करते हो, वही हमको सिखलाते हैं, वही याद दिलाते हैं। घर में भी ऐसे होता है, रोज हम क्लास में आते हैं तो घर में समझ लिया है सबने कि ये तो रोज सत्संग में जाएगा, क्लास करने जाएगा, पर एक दिन थोड़ी सुस्ती आई तो हम तो सुस्ती कर लेंगे, चलो आज नहीं जाते, घर वाले याद रहे, आज जा नहीं रहे हो क्या आज जा नहीं रहे हो क्या बात है, आज क्लास में नहीं जा रहे हो, तो हम सुस्ती करेंगे और वो हमको याद दिलाएंगे तो इसीलिए हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो याद दिला रहे हैं। तो अगर हमने कहा नहीं आज नहीं जाना, क्यों क्या बात है, आलस आ गया क्या, वो और ही ज्ञान हमको देना शुरू करेंगे, हम उनको क्या देंगे, वही हमको देंगे। तो इसीलिए सदा अलर्ट भी रहना है, सावधान भी रहना है, बाबा की हर श्रीमत का पालन भी करना है। तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, फिर लोभ को भी जीता, घर जाना है, घर जाना है, बाबा सारा दिन मुरली में कह रहे हैं। बड़ी दीदी हमारी ये भी बहुत याद दिलाती थी, दीदी के आगे भी दीदी की बातें सुनाई ना सवेरे, तो दीदी के पास क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन दीदी के हाथ में था, दादी प्रकाशमणि और दीदी, ये दोनों दो हंसों का जोड़ा, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से विश्वविद्यालय को बढ़ाया, क्योंकि बाबा के समय तो बहुत सिंपल था, बहुत गुप्त, कोई जानते भी नहीं थे, लेकिन दीदी जी और दादी जी ने कैसे इसको इतना आगे बढ़ाया। तो दीदी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत शक्ति, हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कोई उसमें स्कूल कॉलेज में नहीं गई, कभी भी नहीं गई, लेकिन वंडरफुल थी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेकिन जब अंत के दिनों में दीदी का यही था, कोई उनके पास जाता था, दीदी ऐसे हुआ ये मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम बताते थे, तो दीदी ये कहती अभी घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर चलना है, अब छोड़ो छोड़ो, अब घर चलना है, अब घर चलना है, ये उनको धुन लगी हुई थी, जब भी कुछ कहो अब घर चलना है। और सचमुच दीदी की स्टेज भी ऐसे ही उपराम होती गई होती गई होती गई। तो दीदी का अलग स्वरूप था और दादी जी का फिर उनसे अलग स्वरूप था। दादी जी की तो इतनी ऊंची स्थिति, जो दादी के सामने कोई समस्या अंत में लेके ही नहीं जा सकते थे, अगर सोचा ये भी ये दादी को बताएंगे कुछ बात लेंगे, और दादी की स्थिति इतनी ऊंची, और फिर लगता था अरे ये बात जो हम लेकर आ रहे हैं दादी को बताए, तो इतनी छोटी बात है, इतनी दादी की ऊंची स्थिति और इतनी छोटी बात उनको कही ऐसे लगता है ना, किसी बड़े आदमी को आप छोटी छोटी बात कहोगे क्या, प्रेसिडेंट से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, उसको कहो मेरे घर का नलका बह रहा है थोड़ा ठीक करा दो ये समस्या आप किसको सुनाएंगे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को, वो तो भाई तुम्हारा प्लम्बर को बोल दो, तो राष्ट्रपति को तो ये बात नहीं सुनाएंगे ना, उनके आगे क्या बोलना है, कितनी तैयारी करके जाएंगे, क्या उनके सामने बोलना है। तो दादी जी की स्थिति इतनी ऊंची, जो वो जो भी प्रॉब्लम हमें बड़ी लगती थी, पर दादी के सामने गए तो जैसे कि वो है ही नहीं, पर दादी को ही देखते रहे, दादी से दृष्टि लेते रहे। तो बाबा की भी स्थिति अंत में ऐसे ही थी, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से तो बाबा न्यारे होते ही गए, नहीं तो बाबा पहले हर चीज में इंटरेस्ट लेते थे, खाना क्या पकना उसमें भी इंटरेस्ट लेते थे, क्या भोजन बनना है, कौन आए, फलाना आया, मिलने क्यों नहीं आया, मनो ये सब होता है ना, परिवार है तो सब बातों में ध्यान जाता है। लेकिन धीरे धीरे कैसे उपराम होते गए बाबा, मम्मा भी ऐसे ही थी। अब हम दादी जानकी जी को देखते हैं, दादी जानकी से के पास जाओ बस ज्ञान कैसे बात, और कुछ है ही नहीं है, कुछ और बात कुछ भी नहीं है। अगर दादी को समझो कोई देता भी है ना माना, दादी तो वैसे भी कहेगी रखो, पर कुछ कुछ भी दादी को देते तो बस दादी ऐसे हाथ रखेगी, दाता है ना। हमने ये राजाओं का देखा, हम नेपाल में थे एक साल, तो राजा उस समय जो था उनसे मिलने जाते थे, तो हम उनको गिफ्ट देते थे ना, पर कभी ऐसे हाथ से गिफ्ट ली नहीं। उस हाथ रख देना, हाथ ही रखते थे उसके ऊपर, और वो उनके जो एडीसी और जो असिस्टेंट वो नीचे से ही ऐसे ले जाते, वो ऊपर से हाथ रखते थे, क्योंकि राजा माना दाता, ऐसे करके लेगा थोड़ी, उसको तो ऐसे करके देना है। तो बस ऐसे हाथ रखा और दूसरा लेके गया। यह तो बाबा की भी यही विशेषता थी, दादियों की भी यही विशेषता हम देखते हैं। बस दादी का सदा ही हाथ ऐसे, टोली लेगी टोली देगी, बस टोली देगी, देना, लेने का तो प्रश्न ही नहीं, इतना बड़ा दिल। तो ब्रह्मा बाबा की भी अंत में यही स्थिति थी। और अगर छोटी मोटी कोई बातें लेकर के आता था तो बाबा या तो समझदार होता था तो बाबा के आगे वर्णन करने की जरूरत नहीं होती थी, वो समझ जाता था बाबा के आगे नहीं बोलना है। या तो अगर वो बोलता भी था तो अभिमान में आकर के, तो बाबा उनको बहुत युक्ति से शांत कराते थे। एक मिसाल मैं आपको दूं कि एक बार एक बहन ने लंबा चौड़ा पत्र लिखा था बाबा को, जिसमें सेवा समाचार लिखा था, ये फलाने से मिले, मिनिस्टर से मिले, ये मिले, बहुत कुछ लिखा, इतने लोग आए मेले में, ऐसे ऐसी सेवा हुई, ये ओपिनियन दिया, मतलब बहुत लिखा। तो उसके बाद पत्र में लिखने के बाद वो थोड़े दिन के बाद मधुबन आई, तो मधुबन आई तो बाबा से मिली और बाबा को सब फिर से बताने लगी, बाबा हमने बहुत अच्छी सेवा की, बाबा हमने ये किया। अब बाबा तो शांत सुन रहा है, अब बाबा चाहता था कि बस हो गया ना, बता दिया, पर सीधा कैसे बोले, भाई अभी मत बोलो ज्यादा, ऐसे नहीं बोला। बाबा ने कहा, बच्ची ये आपने पत्र में भी लिखा था ना? हाँ बाबा मैंने पत्र में लिखा था, मैंने बाबा बहुत अच्छी तरह से सारा डिटेल लिखा था। बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं का मतलब बस शांत अब और बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाबा मुरली में सुनाते थे, उस समय उसको कुछ नहीं कहा, फिर बाबा मुरली में सुनाते थे कि बच्चे अपनी सेवा की बहुत बढ़ाई करते हैं, परंतु बाबा कहते कुछ भी सेवा नहीं की, उसको सामने नहीं बोले लेकिन बाबा कहेंगे कुछ भी सेवा नहीं की, अगर सेवा सचमुच की होती तो उसका प्रूफ होता, वो लेटर लेकर आती कि बाबा हमने ये पाया है, ये हमने ऐसे अनुभव किया है। वो बाबा को पत्र दिखाते उनका, जिन्होंने अनुभव किया, जिनकी बढ़ाई कर रही है टीचर, उनका प्रूफ क्या है, वो तो आप जानो, बाबा के आगे तो प्रूफ चाहिए ना। तो बाबा मुरली में सुना देते, जैसे आज भी मुरली में सुना ना, कितनी बातें, कई बातें ऐसी जो पत्रों में आती थी और बाबा फिर उसको अभी मुरली में सुना देता कि सबका उसमें फायदा हो। तो इसीलिए बाबा अंत के दिनों में कैसे न्यारे होते गए। तो वो निराकारी अवस्था की जो मैं बात कर रही थी, इसमें एक तो है देही अभिमानी स्थिति और दूसरी है अशरीरी स्थिति और तीसरी है फिर बीज रूप की स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति तो व्यवहार में है, वो व्यवहार में है, और देही अभिमानी स्थिति अगर है तो ये हमारी बुद्धि में जरूर रहेगा कि किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी ऐसे कोई शब्द कड़वे नहीं बोले जो किसी को दुख पहुंचा हो बाबा की वाणी से। भले बाबा जनरल में कह देंगे बच्चे लोग ऐसे सब पत्थर बुद्धि है, ये है वो है, लेकिन एक जनरल बात, किसी व्यक्तिगत के लिए तो नहीं ना, और किसी के लिए भी समझो है भी तो भी बाबा मुरली में कहेंगे, डायरेक्ट उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आत्मा इतनी कमजोर हो मान लो और उसको डायरेक्ट कह दो तो क्या होगा, उसको अपमान तो लगेगा, क्योंकि उसको अपना अभिमान है, जिसको अभिमान होता है उसको अपमान तो लगता ही है ना। तो इसीलिए और अगर उसको कह दिया और वो बच्चे को अभिमान अपमान लगे तो बाबा का बनने की बजाय और ही माया का फिर न बन जाए। जैसे कपड़ा बहुत मैला हो, अब मैले को साफ करना है, लेकिन जोर से सटका लगाओ सटका लगाओ, आखिर क्या होगा? फट जाएगा ना वो मैल, तो क्या वो तो चलो जाएगी, हो सकता जाए भी, लेकिन फट जाएगा तो फायदा क्या? तो उस आत्मा की क्या स्थिति हो जाएगी? तो वो बाबा तो नहीं चाहेंगे ना। इसलिए क्या शुरू शुरू में जब बाबा कहते ना कचहरी कराती थी मम्मा, तो कचहरी जब कराती थी तो उसमें बाबा नहीं जाते थे। कई पूछते बाबा क्यों नहीं जाते थे कचहरी में, बाबा मम्मा को ही भेजते थे। तो बाबा ने एक बार इसका राज बताया कि इसमें शिव बाबा है और कचहरी, कचहरी का मतलब समझा, समझो किसने भूल की। तो पहले मम्मा पूछती थी किसने अगर भूल की है खुद बताओ, मैंने मैंने ये भूल की। तो फिर उसके बाद दूसरा समझो अगर खुद नहीं बताया तो किसी और को उस विषय में पता हो तो वो बताए कि इसने ये भूल की है। फिर तीसरी बात अगर किसी ने किसी को भूल करते हुए देखी हो वो बताए, एक खुद की भूल और जिसके साथ हुआ चाहे वो बताए, और अगर दोनों का नहीं है दोनों नहीं बता रहे तो तीसरा किसने देखा वो बताए। ये कचहरी होती थी, इसको बाबा कचहरी कहते थे। तो अभी अभी कोई अगर मान लो किसी को पता है कि मैंने ये भूल की है और खुद नहीं बताएगी तो दूसरा बता देगा, इसलिए खुद ही बता देती थी। और अगर खुद नहीं बताई और जिसके साथ हुआ वो बता देंगे। तो इसीलिए हर एक अपना अपना स्पष्टीकरण अपने ढंग से करता था, लेकिन कई तो छिपाते भी थे। तो समझो अगर बाबा वहां पहुंच जाए और बाबा बच्चों से पूछे और कोई उस समय झूठ बोल दे, मान लो कितना बड़ा पाप, भगवान के आगे झूठ बोल दिया तो बाबा जाते ही नहीं थे। बच्चों के कल्याण अर्थ कि इनका 100 गुना पाप न हो जाए, कहीं ये बच्चा छिपाए तो छिपाए नहीं, चलो मम्मा के आगे छिपाया तो इतनी सजा नहीं है, पर बाबा के आगे छिपाया तो बहुत बड़ी सजा हो जाए, इसलिए बाबा जाते नहीं थे। बच्चों का कल्याण अर्थ, ये भी इसमें कल्याण नहीं कि बाबा को टाइम नहीं है इसलिए नहीं आए, ऐसी बात नहीं है, पर इसमें बच्चों का कल्याण देख करके बाबा नहीं जाते थे। इसीलिए बाबा हमेशा बहनों को आगे रखते थे, मम्मा को आगे रखा, फिर दीदी को आगे रखा, फिर दादी दीदी, फिर दादी जी थे। तो अभी तो देखो बहुत है, हर एक जोन है, ये बहुत कुछ है। हेडक्वार्टर्स में तो तब आता है जब जोन में उसका नहीं निराकरण हो या कुछ हो, क्योंकि बहुत विस्तार हो गया है। उस समय तो छोटा सा परिवार था। तो ब्रह्मा बाबा केवल उस एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं थे, लेकिन अपनी अवस्था को बनाने के लिए भी बाबा इतना पुरुषार्थ करते थे। हम लोग तो कई बार बहाने देंगे ना, मैं इतना बिजी हो गया जो मैं आज योगी नहीं किया, मैं इतना बिजी हो गया, इतना थक गया जो अमृत वेले उठा नहीं, मतलब बहाने दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसे बहाने नहीं दिए। और कैसे अपनी अवस्था के प्रति भी इतना ही ध्यान था। तो जितना ही वो देही अभिमानी थे उतना ही अशरीरी अवस्था पर ध्यान देना, एक सेकंड में न्यारे बन जाओ आज जैसे बाबा ने कहा, एक सेकंड में अंदर चले जाओ, एक सेकंड लगना चाहिए। देही अभिमानी स्थिति का बहुत काल का अभ्यास होगा तो अशरीरी बनना सहज है, जैसे योग में बैठे आत्मा अशरीरी बन जाती है। अगर देही अभिमानी बनने का अभ्यास कम है तो बैठते ही अशरीरी नहीं होंगे, हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, यहाँ इधर उधर देखते रहेंगे या मन भटकता रहेगा, घड़ी को देखेंगे कि अभी कितने बजे, टाइम हुआ कि नहीं हुआ, तो अशरीरी क्या बनेंगे। पर बैठे मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, बन गए अशरीरी। बाबा बैठते थे एकदम अशरीरी, अशरीरी देही अभिमानी स्थिति हो जाती थी। तो वो अशरीरी अवस्था योग की अवस्था, और एक सेकंड में सब संकल्प स्टॉप, यानी कि अंदर संघर्ष करना पड़े व्यर्थ को खत्म करने के लिए, संघर्ष नहीं, युद्ध किया, संघर्ष किया, तो फिर वो देही अशरीरी अवस्था थोड़ी हुई। तो इसीलिए न युद्ध करना है, न संघर्ष करना है, न पुरुषार्थ उसमें हो कि मैं व्यर्थ को जीतूं, व्यर्थ पर विजय पाऊं, नहीं, लेकिन है ही विजयी, विजयी स्थिति है ही, वो है अशरीरी स्थिति, जो बैठे और एकदम देह से न्यारे हो गए, अंदर आत्मा अपने आप में स्थित हो गई। और वो अशरीरी अवस्था फिर हमको निराकारी अवस्था बनाने में सहयोग देती, जैसे देही अभिमानी स्थिति अशरीरी बनाने में सहयोग देती, वैसे अशरीरी स्थिति फिर बिंदु रूप की स्थिति बनाने में सहयोग देती, जिसको बिंदु रूप में बाबा तीन बिंदु की भी बात कर रहे हैं, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और रामा बिंदु, तो बस ये हर वक्त मैं बिंदु लगा सकूं और उस बिंदु स्थिति में बीज रूप की स्थिति का अनुभव कर सकूं, जैसे मैं एक सेकंड में परम धाम में पहुंच गई, सब बंधनों से मुक्त हो गई, ये बीज रूप की अवस्था, तो ये निराकारी अवस्था है। और इस निराकारी अवस्था में सब कुछ व्यर्थ, अशुद्ध, अशुभ, कमजोर, ये सब कुछ स्वाहा हो जाता है, जैसे सागर में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, इस निराकारी अवस्था में सब कुछ स्वाहा हो जाता है और आत्मा शुद्ध, पवित्र, सच्चा सोना बन के निकलती है। तो ये निराकारी अवस्था बाबा की देखी, बाबा चल रहे हैं, अचानक बाबा खड़े हो गए, और खड़े हो गए सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, बाबा दृष्टि देने लगे, सब दृष्टि लेने लगे, थोड़े बहुत आपस में बातचीत कर रहे थे वो भी सब चुप हो गए। तब सोचते एक बाबा का जैसे चुंबक का आकर्षण, क्योंकि उनकी निराकारी स्थिति सहज बाबा अनुभव करते थे, और उसी निराकारी अवस्था में बाबा कहते हैं तुम्हारे सब पाप दग्ध होते हैं, आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, हल्की बनती है, तो पावन बनती है, ये सब उस निराकारी अवस्था में होती है। लेकिन उसके लिए कदम ये है तीन, कौन से तीन कदम, देही अभिमानी बनना, अशरीरी बनना और बिंदु स्थिति, तीन बिंदु लगाने की स्थिति, तो एकदम बीज रूप आत्मा बन जाए और वो स्थिति अंत में हमको लानी है, जिस समय और कोई देहधारी की याद न हो, क्योंकि कोई भी देहधारी याद आया माना फेल, चाहे कोई व्यक्ति याद आया, वस्तु याद आई, वैभव याद आया, कोई घटना याद आई, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात अंत के समय याद आई तो फेल, क्योंकि अंत का पेपर तो एक सेकंड का होगा, एक सेकंड का पेपर, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक ही क्वेश्चन है, स्कूल में कॉलेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें हाँ या ना ये जवाब लिखना है, या तो हाँ या तो ना, परसेंटेज नहीं होता उसमें, या तो हाँ या तो ना, तो अंत का एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, और वो कौन सा क्वेश्चन होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यही बस प्रश्न होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है या नहीं है बस। लेकिन उसमें हाँ होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो नष्टो मोहा नहीं होंगे अंत में, कोई न कोई याद आएगा, कुछ न कुछ बात याद आएगी, तो कोई कुछ भी याद न रहे इसके लिए बहुत काल का अभ्यास, और जब बहुत काल का अभ्यास होगा तब हम एवर रेडी रह सकेंगे, क्योंकि कभी भी आएगा, अचानक होगा, तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, वो जो क्वेश्चन पेपर होता वो अचानक नहीं होता, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा ये पता नहीं होता, और ये क्वेश्चन पेपर का पता है पर कब आएगा ये पता नहीं है ना, इसीलिए का अचानक। तो अचानक में पास होना है तो एवर रेडी रहना पड़ेगा, कभी भी आएगा। हर वक्त उसके लिए अभ्यास चाहिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर हमको पता है कि कब आएगा तो हम सोचेंगे चलो कल है ना क्वेश्चन पेपर, आज से मैं पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, तो तब तक तो मौज करो, है ना। स्टूडेंट्स यही तो करते हैं, मेरा एग्जाम अप्रैल में है तो मार्च तक तो मैं मौज करूं ना, अप्रैल में एग्जाम्स है। पर यहाँ तो वो नहीं है, डेट तो नहीं बाबा ने बताया, इसलिए डेट कॉन्शियस तो बन ही नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अचानक होना है तो एवर रेडी रहना ही पड़ेगा। और जवाब एक सेकंड का है, हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन सरल है या बहुत मुश्किल है, खाली हाँ या ना ही लिखना है ना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, सदा उपराम उपराम भी रहे, बच्चे बच्चे बच्चों के प्रति वो प्यार, वो लगन, वो भावना, वो पालना सब कुछ था, लेकिन फिर भी न्यारे। जैसे बाबा कहते हैं ना, कल भी बाबा ने कहा अधिकार तो बहुत चाहते हैं, अधिकार है बाबा से, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन अधिकार के लिए त्याग, जिम्मेदारी, बिना जिम्मेदारी कैसे ही अधिकार चाहिए। ना सरकारी नौकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, अधिकार बहुत मांगते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा ये करो, ये करो, वो करो, सब बढ़ाते भी हैं पर काम तो करो, वहां काम करना नहीं। और अधिकार बहुत रखते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। परंतु बाबा कहते हैं अधिकार के साथ जिम्मेदारी, जिम्मेदारी माना उतना ही अपना जो पन है उसका त्याग, तब कहेंगे जिम्मेदारी। जैसे माँ एक जिम्मेदार व्यक्ति है अपने बच्चों के प्रति, अपना खुद भूखी रहेगी बच्चों को देगी, जिम्मेदारी है ना। कुछ भी अगर है बात तो खुद पर उठाएगी, बच्चों पर थोड़ी ला देगी। तो उसमें त्याग भी है और प्यार भी है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि अधिकार लेना है तो उसके लिए इतना ही त्याग चाहिए, और वो त्याग तब होगा जब इतना प्यार बाबा से है कि बाबा जो कहे वो मुझे करना है बस, जैसे ब्रह्मा बाबा को था। और जो ब्रह्मा बाबा का ये संस्कार था वो अव्यक्त होने के बाद भी ये संस्कार प्रकट होता था। आप लोगों ने नोट किया होगा कई ऐसी अव्यक्त मुरलियां हैं जिसमें शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का डायलॉग है, शिव बाबा बोले ब्रह्मा बाबा बोले, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात कर रहे हैं। अब दोनों कंबाइंड है, बाबा संपूर्ण बने, ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हो गए। तो दोनों कंबाइंड है तो आपस में बात भी कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं? दोनों मिलके एक साथ भी बच्चों से बात कर सकते हैं और आपस में भी कंबाइंड है कर सकते हैं, सदा ही साथ है। तो ब्रह्मा बाबा को अभी देखो अव्यक्त हुए कितने साल हो गए, 69 और अभी 2017 48 साल बाबा अव्यक्त वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक, कब परम धाम के गेट खोलने हैं? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछते, वो इंतजार कर रहे हैं बच्चों का। और शिव बाबा कहते बच्चे तो तैयार ही नहीं हुए हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा पूछते बच्चे तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, ब्रह्मा बाबा इतना जल्दी तैयार हो गया तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, बच्चों को भी तो जल्दी होना चाहिए, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को आथत देता है, हाँ धीरज देता है, क्या बच्चे ड्रामा अनुसार सब कुछ एक्यूरेट है, ड्रामा अनुसार सब कुछ एक्यूरेट है, सब कुछ सही है, क्योंकि जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है, इसलिए क्यों ये प्रश्न ही नहीं है। पर ब्रह्मा बाबा को आते क्यों बच्चे जल्दी तैयार नहीं हो रहे, ब्रह्मा बाबा तो हो गए इतना जल्दी, लेकिन ब्रह्मा बाबा इसलिए नहीं हुए कि तुरंत घर चलना है। अव्यक्त पाठ का किसको पता नहीं था, जब तक पहला गुलजार दादी में बाप दादा नहीं आए थे तब तक किसी को पता नहीं था कि अव्यक्त पाठ कोई चलेगा, किसी को नहीं मालूम था। पर ये भी चलना जरूरी था तभी तो इतना विस्तार हुआ, अगर ये अव्यक्त पाठ नहीं होता तो इतना विस्तार होता बच्चों का, क्योंकि बाबा ने साफ उसी समय कहा अभी विहंग मार्ग की सेवा होगी, अभी तक तो चिटी मार्ग की सेवा थी, अभी विहंग मार्ग की सेवा होगी। विहंग पक्षी, पक्षी पक्षी की उड़ान और चींटी की चाल, कितना अंतर है दोनों में। तो जैसे बाबा अव्यक्त हुए सेवा तो इतनी वृद्धि को पाई दीदी दादी की अध्यक्षता में, जिसको बाबा ने पहली मुरली में कहा भी शिव और ब्रह्मा बाप और शिव बाप, सूर्य और चंद्रमा मात पिता, ये गुप्त हो जाएंगे और शक्तियां विश्व के मैदान में प्रकट होंगी, सूर्य चंद्रमा छिप जाएंगे, सितारे चमकेंगे, ये बाबा ने उस मुरली में पहली मुरली में कहा था। क्योंकि वो अगर न हो तब तक विश्व की सेवा नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा बाबा तो गुप्त रहे, ब्रह्मा बाबा एक नींव की तरह, जो दादियां दीदियां दादियां जो ओरिजिनल थी आदि रत्न, वो नींव है, वो नींव, नींव तो प्रत्यक्ष नहीं होती है, प्रत्यक्ष कौन होता है, वृक्ष होता है, नींव तो फाउंडेशन है, उसी वो आधार है सारे वृक्ष का। तो वो तो हमारी दादियां दीदियां हैं जिन्होंने 14 साल तपस्या की ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने, और उनको देख करके फिर हम लोग सीखे आगे बढ़े, उनसे प्रेरणा ली और देखो विश्व की सेवा हो रही है, कितना सुंदर ये स्वरूप है विश्व सेवा का, जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस प्रकार से गुप्त रीति से भगवान नई दुनिया की स्थापना करवा रहा है। क्योंकि दुनिया तो विनाश ही देख रही है, कि मोहिनी बहन अपनी न्यूयॉर्क की है, उससे किसी ने पूछा कि विनाश कब होगा आखिर, कब होगा, तो उसने बहुत सुंदर बात सुनाई, उसने कहा वो हमसे क्यों पूछते, हम थोड़ी विनाश करने वाले हैं, जो विनाश करने वाले उनसे पूछो ना वो तो रशिया का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति, उनके हाथ में बटन है, वो जब चाहे, बस बटन दबाने की बात है, सब कुछ तैयार है, कुछ भी करना नहीं है, सब तैयार है, लेकिन उसके लिए बटन दबाएगा कौन, और दोनों के हाथ में है, अमेरिका रशिया, उस समय तो क्या था, कोल्ड वॉर था, अमेरिका और रशिया ये दोनों इतने हथियार बना चुके थे, कोल्ड वॉर प्रॉक्सी वॉर युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन गुप्त ही गुप्त रूप से वो हथियार अपने बना रहे, वो अपना हथियार बना रहे, और दोनों ही जो दुश्मन देश है उनको मदद कर रहे, अभी भी यही चल रहा है ना, अमेरिका उनको कर रहा है और रशिया दूसरे को कर रहा है, और इसीलिए सब खड़ा हुआ है, क्योंकि एक शुरू करेगा तो दूसरा छोड़ेगा थोड़ी, वो अपना करेगा, तो एक दूसरे से डर डर के मारे नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर शुरू करेंगे तो हम भी बचने वाले नहीं है, है ना, तो इसीलिए शुरू नहीं कर रहे हैं। तो वो तो तैयारी हो चुकी है, उसके लिए तैयारी के लिए रुकना नहीं है। तो मोहिनी बहन ने बहुत सुंदर कहा, वो हमसे क्यों पूछते, हम थोड़ी विनाश करने वाले, हमारे हाथ में कोई शक्ति है क्या विनाश करने की, लेकिन हाँ स्थापना में हमारा योगदान है। तो ये आप पूछ सकते हो कि स्थापना कब तक होगी, और उसके लिए भी फिर मुझे याद है एक मुरली चली थी अव्यक्त बाप दादा ओम ये शांतिवन में, बाबा ने मुरली चला के पूछा कि डेट बताओ, डेट बताओ कब संपूर्ण बनना है, डेट बताओ। तो निर्वैर भाई से बाबा ने पूछा डेट बताओ, बाबा ने कहा, तो निर्वैर भाई ने कहा बस बाबा इस सीजन के अंत तक सब तैयार हो जाएंगे, ऐसे कह दिया। तो बाबा ने उनको देखा, मुस्कुराया, क्या आपने सबका ठेका उठाया है? याद है ये मुरली, आपने क्या सबका ठेका उठाया है? बेचारा निर्वैर भाई तो उसको तो जोश, क्योंकि बाबा ने जोश दिलाया ना, कब तक तो भाई जवाब तो देना है। तो उसने सबके प्रति, सबकी तरफ से कहा कि सीजन के अंत में यह जो शब्द कहे। अब फिर बाबा ने मुरली चलाई, फिर दादी जी से पूछा, दादी जानकी से पूछा, रेट बताओ। तो दादी ने बड़ा सुंदर जवाब, दादी ने कहा, बाबा मैं तो तैयार हूँ दूसरों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती हूँ, वो कहाँ ले सकती है, तो मैं तो तैयार हूँ बाबा, जब भी आप कहो मैं तैयार हूँ। तो क्योंकि दादी तो जैसे संपूर्ण ही है ऐसे समझो, बिल्कुल एक सेकंड में ऐसे न्यारी हो जाती है, एक सेकंड में बिल्कुल उपराम, जो बात मत पूछो। दादी कहती है मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन दादी का वहां उपस्थित होना ही यही बहुत बड़ी सेवा है। तो जब बाबा ने दादी को कहा कि, जब दादी ने कहा बाबा मैं तो तैयार हूँ, तो बाबा ने कहा तो क्या तुम अकेली जाओगी? निर्वैर भाई को कहा क्या सबका ठेका उठाया है, और दादी को कहा क्या अकेली जाओगी? क्योंकि मैं तैयार हूँ का मतलब क्या अकेली चल पड़ोगी क्या? तो बाबा ने उसको कहा कि आपको सबको तैयार करना है, ये बाबा ने उनको काम दिया। उसके बाद उसके बाद का बड़ा वंडरफुल सीन होता था। दादी जानकी ने जैसे क्लास कराया, टीचर से मिली, हम लोगों से मिली, तो दादी ने कहा कि देखो बाबा ने बड़ा काम दिया, सबको तैयार करना है। अब कैसे तैयार करना है, वो आपको तैयार होना है हमारे साथ। तो फिर दादी ने एक बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाया कि देखो जब मैं ज्ञान में आई ना, तो मुझे बोलना नहीं आता था, बहुत शाय, बहुत माना बात नहीं करती थी दादी जानकी, चुपचाप रहती थी बस। और बाबा ने जो कहा वो सामने बैठ करके बस जैसे नहीं कि हामी भरना करना, क्योंकि बाबा कहते थे कि नाचने वाली अगर नाच रही है और जो सामने वाले सो रहे हैं तो वो नाचने वाले को मजा नहीं आएगा, तो उमंग दिलाना है ना, तालियां बजाओ तो वो नाचने वाले या गाने वाले और गाएंगे। तो वो सोचती थी मैं सामने बैठ के बाबा की आगे ऐसे करूं तो झुटका खाऊंगी, तो बाबा ने आज भी बोला झुटके खाने वाले बाबा के सामने नहीं बैठे, बाबा ऐसे भी कहते थे। तो इसीलिए दादी सामने बैठ के करती थी। तो एक दिन बाबा ने उसको कहा क्या तुम कबूतर हो क्या? कबूतर क्या करता है? उसकी वही भाषा है ना, ऐसे सिर हिलाता है और वो दाना चुगता है, फिर करता रहता है, तो तुम कबूतर हो क्या? तो दादी ने कहा बाबा की मुरली सुन रही हो? तो दादी, तो बाबा ने कहा बच्ची जो बाबा का सुनती हो ना वो दूसरों को सुनाओ, अपने लिए तो सुनती हो ठीक है पर खाली नहीं, पर दूसरों को सुनाओ। वो तो क्या करती थी दादी, जो सुनती थी अंदर में याद किया और हूबहू जैसे बाबा के शब्द उसी अनुसार दूसरों को सुनाती थी। बाबा ने कहा है ना हूँ सुनाना है। तो एक दिन दादी को बाबा ने कहा क्या अभी तुम तोता हो क्या? तोता क्या करता है? जो सुना बिना समझे वो दूसरों को सुनाता रहता है, सुनाता है। तो तोता हो क्या? अब तोता भी नहीं बनना है क्योंकि बाबा ने ही तो कहा ना जो तुम सुनती हो वो दूसरों को सुनाओ। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अपना विचार सागर मंथन करो, जो बाबा से सुनती हो उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, उसमें से नई नई पॉइंट्स निकालो। देखो मम्मा कैसे निकालती है, मम्मा मुरली चलाती एक पॉइंट पर सारी मुरली, एक ही टॉपिक लेती थी और उस पर सारी मुरली चलाती थी। बाबा तो सागर है, सागर की लहरें कभी इधर से कभी इधर से, तो वो लहरें निकलेगी क्योंकि वैरायटी है ना सागर की, तो लहरें इतनी स्ट्रांग होती है। तो मम्मा देखो एक टॉपिक बाबा की लेती है और उस पर सारी मुरली चलाती है। तो तुम भी विचार सागर मंथन करो और फिर दूसरों को सुनाओ, बस तो दादी ने कहा मुझे नशा चढ़ गया और उसके बाद तो फिर देश विदेश की सेवा करती थी और दादी खूब लेक्चर्स देती थी, खूब करती थी। तो फिर दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे जब बाबा ने मुझे विदेश भेजा तो मैं तो ऐसे समझती थी कि एक तरफ ब्रह्मा बाबा एक तरफ शिव बाबा, ये दोनों मेरे कंधे पर बैठे हैं और मैं उड़ रही हूँ। जैसे हनुमान ने क्या किया, राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके सारा वो उड़ता गया उड़ता गया। तो ऐसे मैं अनुभव कर रही थी कि दुनिया का क्या अपने सेवा केंद्र विश्व भर में खोले। और फिर क्या मैं बन गई, तो दादी ने कहा मैं तो वो कठपुतली बन गई, पपेट। पपेट कठपुतली क्या होती, कठपुतली खुद उसको अपनी ताकत नहीं है, वो जो जो उसको चलाता है ना वो रस्सियां खींचता है बस, और वो हाथ पैर ऐसे चलाती है कठपुतली। तो पहले थी मैं पिजिन, इंग्लिश शब्द है पिजिन माना कबूतर, फिर बनी मैं पैरेट माना तोता, फिर बनी मैं पपेट, बस बाबा का पपेट। और पपेट बनकर के यहाँ बाबा उड़ा रहे वहां उड़ा रहे वहां उड़ा रहे हैं। एक बार तो दादी ने एक दिन में 4 बार हवाई जहाज उतरी और चढ़ी है, 4 बार माना 2 फ्लाइट या 3 फ्लाइट, 6 बार एक में गई फिर उसी जगह उतरी, फिर 1 घंटे के बाद दूसरी फ्लाइट, फिर कहाँ गई फिर तीसरी फ्लाइट, माना इतना दादी टूर करते थे। तो जैसे बाबा ने उनको कठपुतली बना के उड़ाया नचाया। अभी जब बाबा कहते बच्चे तुम बच्ची अकेली जाओगी क्या, सबको ले जाना है, तो अभी मैं पायलट बन जाऊंगी। पायलट बन करके पायलट क्या करता है, वो सबको उड़ाता है ना। वो बैठेगा पायलट की सीट पर और हवाई जहाज चलाता है और सबको उड़ाता है। तो पहले पिजिन, फिर पैरेट, फिर पपेट और फिर पायलट, सब प प प से इतना हम लोग हंसे, मतलब दादी उस समय ऐसे हंसाती थी। तो देखो दादी, अभी तो दादी जब आती है ना ये कहती है पता नहीं क्यों बाबा ने मुझे शरीर में रखा है, क्यों रखा है। फिर ये फोटो देखती है आदि रत्नों का, आप सब चले गए मुझे क्यों बाबा ने यहाँ रखा है। तो फिर कहती मैं बाबा से पूछती हूँ बाबा मुझे क्यों रखा है, तो फिर याद आता है बाबा ने कहा मुझे ये इसलिए क्योंकि सबको ले जाना है। तो ये है बाबा की सुंदर बातें, इस यज्ञ की सुंदर बातें, ब्रह्मा बाबा की बातें, और कैसे बाबा हम बच्चों को अब यही कहते हैं सदा तैयार रहो, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो जाए अंदर से उपराम रहो। तो निराकारी भी बनना है, निर्विकारी भी बनना है और निरहंकारी भी बनना है। कोई मेरे से ऐसा कर्म न हो जो मेरा पाप बन जाए बस, क्योंकि इस समय अगर कोई पाप किया तो 100 गुना सजा है, पद भी भ्रष्ट होगा सजा भी खाएंगे। बाबा हर मुरली में हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं, और छोड़ो तो छूटो, कुछ भी है छोड़ो तो छूटो, सब हिसाब किताब समाप्त होने का ये संगम का ये अंतिम समय है। पता नहीं कितने 63 जन्मों के क्या क्या कर्म हुए होंगे, किस किस के साथ, ये सब अभी चुकतू हो रहे। नया कर्म और मत बनाओ, न फंसो कहीं, न नया, न कुछ छोड़ो न नया कुछ जोड़ो, बस निभाते जाओ, चुकतू करते जाओ, सबको दुआएं देते जाओ। बड़े क्या करते हैं, छोटों में कंपटीशन होती है और बड़ों में दुआएं, आगे बढ़ो, बस यही करना है। वानप्रस्थ अवस्था है, यही बट्टी से यहाँ शक्ति भर के जाना है ताकि हम फरिश्ता बन के निकले। देवता तो बनेंगे पर पहले हमें फरिश्ता बनना है, डबल लाइट बनना है, सब बोझ को समाप्त करना है, हल्का बनना है। चलो ओम शांति। हाँ ठीक है।
ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। अब तो ये धुन लग गई ना, आज कितना सहज करके बता दिया कैसे हमारे बड़ों ने पुरुषार्थ किया है। हमें भी दुआएं देना है, उपराम होना है, तैयार होना है, वापस घर जाना है। तो बहुत सुंदर दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया।